कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है।
किसी जमाने में दीवानगी और पागलपन की बातें करने वाला एक कवि आज खुद को गंभीर राजनेता के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुटा है।
मैं अरविंद केजरीवाल से आगे निकलना चाहता हूँ, मैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता बनना चाहता हूँ।
पेशे से प्रोफेसर, स्वभाव से कवि और अब राजनेता के नए अवतार में कुमार विश्वास ने कामयाबी की एक लंबी छलांग लगाई है, क्योंकि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी का चर्चित चेहरा है और पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। उन्हें केजरीवाल का संकट मोचक और करीबी सहयोगी भी माना जाता है और केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास के ऐसे संबंधों की नींव उस वक्त पड़ी थी जब वो अन्ना हजारे के आंदोलन में शरीक हुए थे। कुमार विश्वास की ये तस्वीरें साल 2011 की हैं, जब अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन अपने पूरे चरम पर था। हालांकि इस वक्त तक कुमार विश्वास गीत और कविता की दुनिया में अपना नाम कमा चुके थे, लेकिन देश ने अन्ना के आंदोलन के दौरान पहली बार एक ऐसा चेहरा देखा जो मंच से आंदोलन के गीत गाकर युवाओं को आंदोलित कर रहा था। अन्ना हजारे के मंच से लोगों के दिलो दिमाग में आंदोलन की अलख जगाने की जिम्मेदारी कुमार विश्वास को सौंपी गई थी और एक कवि के तौर पर जब कुमार बोलने के लिए खड़े होते थे तो मैदान तालियों की आवाज से गूंज उठता था। अन्ना आंदोलन के दौरान ही केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के बीच टीम अन्ना के एक अहम सदस्य के तौर पर कुमार विश्वास भी अपनी जगह बना चुके थे। यही वजह थी कि जहां कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का मंच सजता, उस मंच पर कुमार विश्वास भी नजर आते थे। कुमार विश्वास की देश प्रेम से भरी कविताओं ने उन्हें अन्ना के मंच पर अहम जगह दिलाई थी, लेकिन इसी दौरान कई विवाद भी उनके पीछे पड़े रहे। अन्ना आंदोलन के दौरान अक्टूबर 2011 में कुमार विश्वास ने चिट्ठी लिखकर टीम अन्ना को भंग करने की मांग की थी। इसके बाद जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान किया तो इससे किनारा करने वालों में कुमार विश्वास भी सबसे आगे थे, हालांकि बाद में वो अपनी बात से पलट गए थे।
मैंने कहा कि राजनीति के लिए जिस मस्तिष्क की आवश्यकता चाहिए, मैं उस मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं, मैं कवि हूँ, दिल का आदमी हूँ, दिल से सोचता हूँ, भावनाओं की बात कहता हूँ, जो मुंह में आता है, जो समझ में आता है वो बोलता हूँ।
अरविंद केजरीवाल के साथ कुमार विश्वास पहली बार अन्ना के मंच पर नजर आए थे, लेकिन वो इससे काफी पहले 2006 में ही केजरीवाल के संपर्क में आ गए थे। कुमार विश्वास को केजरीवाल के नजदीक लाने में उस वक्त उनके बचपन के दोस्त मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास बचपन के दोस्त हैं और उन्होंने गाजियाबाद के पिलखुआ में एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। 44 साल के कुमार विश्वास का जन्म भी पिलखुआ के इसी घर में हुआ था।
सबसे प्यारा, चार भाई बहनों में, पांच भाई बहनों में सबसे छोटा, तीन बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है, इसलिए उसे खूब प्यार मिला। खेल कूद में बहुत अपना रहा, मस्ती काटी, पढ़ने में बहुत तेज रहा है, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है।
कुमार विश्वास ने स्कूल की पढ़ाई भी गाजियाबाद के पिलखुआ में ही पूरी की थी। पिलखुआ के सर्वोदय इंटर कॉलेज में जब कुमार विश्वास पढ़ाई कर रहे थे तो इसी दौरान उनकी दोस्ती दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से हुई थी। कुमार विश्वास के स्कूल टीचर आज भी उन्हें एक ऐसे स्टूडेंट के तौर पर याद करते हैं जो वाद विवाद प्रतियोगिता में अपनी तर्क शक्ति से सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर दिया करता था।
सांस्कृतिक कार्यक्रम सभी में चढ़कर हिस्सा लेता था और मुख्य रूप से डिबेट में तो ये अक्सर किसी भी टॉपिक पर इसे बोलने के लिए दिया जाए तो ये फर्स्ट आता था। एक्सटेम्पोर डिबेट में भी जिसमें टॉपिक तुरंत दिया जाता है, पहले से घोषित नहीं होता है, ऐसी भी कई प्रतियोगिताएं हमारे यहाँ विद्यालय में आयोजित हुई, उनमें भी इसने पहला स्थान प्राप्त।
विद्यालय के प्रथम बैच के विद्यार्थी रहे हैं और बहुत ही तेज तर्रार, कुशाग्र बुद्धि, मेहनती वो विद्यार्थी रहे। 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे समय पर या और अन्य गतिविधियों में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। विशेषकर मैंने जो इस समय ध्यान कर रहा हूँ, जो देशभक्ति के प्रोग्राम होते थे उन प्रोग्राम में उनकी विशेष रुचि रहती थी और वो अपनी जो क्लास टीचर्स होती थी उनसे अनेक तरह के सवाल ऐसे करते रहते थे जो उस समय का आम उस उम्र का बच्चा नहीं कर पाता। यही बहुत है कि इतने सारे बच्चों के बीच आज भी मुझे कुमार विश्वास की छवि मेरी आंखों के सामने है।
स्कूल की डिबेट में नंबर 1 आने वाले कुमार विश्वास गाने बजाने में भी अव्वल रहते थे। कम उम्र में ही अपनी बातों और तर्कों से लोगों को लाजवाब कर देने वाले कुमार विश्वास को लड़ाई झगड़े से बेहद डर लगता था। उनके पिता चंद्रपाल शर्मा शहर के कॉलेज में पढ़ाते थे, लिहाजा घर का माहौल भी बेहद संयमित और साहित्यिक था। घर में फिल्मी बातों के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन परिवार के ये सारे बंधन कभी कुमार विश्वास के पांव बांध नहीं सके।
कुमार बचपन से हिंदी मूवी देखने का बड़ा शौकीन था और हमारे यहाँ घर में पढ़ाई का माहौल था और मेरे पिता एक महाविद्यालय में प्रोफेसर थे, HOD थे, तो हम सब लोग पढ़ने में रुचि रखते थे और वो अक्सर पढ़ाई के समय क्लास बंद करके यहाँ के शहर के टॉकिंग में मूवी देखने चला जाया करता था। और मैं, मेरी छोटी सिस्टर जो आजकल मोदी नगर में हिंदी विभाग अध्यक्ष है, हम दोनों बड़े परेशान रहते थे ये पिक्चर देख कर आएगा, पापा की डांट लगेगी। और ये मालूम जब पड़ता था, जब घर में घुसता था गाने गा रहा था तो फिल्म के, उससे हम आइडिया लगा लिया करते थे ये वाली फिल्म देखी उसने। इस तरह की उसकी बचपन की आदत थी, मूवीज़ देखना, कविताएँ पढ़ना, हरमंश राव बच्चन की मधुशाला और कामायनी, आंसू, इस तरह की चीज़ें उसकी आदत होती थी।
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल।
घर के साहित्यिक माहौल ने कुमार विश्वास के सीने में कविता के बीज कब बो दिए खुद उनको भी इस बात का पता नहीं चला। लेकिन उनके बड़े भाई विकास शर्मा बताते हैं कि जब वो 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब से उन्होंने मंच पर कविता पाठ करना शुरू कर दिया था। श्रृंगार रस के कवि माने जाने वाले कुमार विश्वास के पहली बार सार्वजनिक मंच पर कविता पाठ करने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है।
88-89 की बात है, मैं अनूप शहर के डिग्री कॉलेज में लेक्चरर था, वहाँ एक कार्यक्रम था सेनापति के ऊपर, महाकवि सेनापति के ऊपर। वहाँ के जो आयोजक थे मेरी विद्यार्थी थी, उसके पिता थे, इसने मुझसे कहा अरे हम पवार वहाँ संचालन कर रहे हैं, आप ऐसा मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। मैंने वहाँ के जो थे आयोजक डॉक्टर, वहाँ के शहर के डॉक्टर थे, उन्हें पत्र लिखा कि मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा श्रृंगार का कवि है, आप इसे बोलने का मौका दें। ये वहाँ गया, इसे कविता पाठ का मौका मिला और 100 रुपये जमाने में 89-90 में, और उस दिन अपने को स्थापित किया और हरिओम पवार की नजर में ये कवि के रूप में स्थापित हुआ। और फिर हरिओम पवार से अनेक कार्यक्रमों में आमंत्रित करने लगे और धीरे धीरे इसका श्रृंगार के प्रति रुचि बढ़ी और इसी कविता को सुनने जाने लगा।
बचपन से ही तेज दिमाग रहे कुमार विश्वास की याददाश्त भी उतनी ही जबरदस्त रही है। यही वजह है कि उनके पिता चाहते थे कि वो भी अपने बड़े भाई की तरह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें और इंजीनियर बने।
कभी सोचा था आपका बेटा जो है देश की राजनीति में आ पाएगा?
ये कभी नहीं सोचा, ये कभी नहीं सोचा। पढ़ने में ये था कि जब भाई वो BA भी कर गया तब ये लगा कि अब इसको इंजीनियरिंग करा, इसमें नहीं चल पाया। बड़े भाई ने इसके लिए विकास, डॉक्टर विकास शर्मा ने कहा कि मैं सागर यूनिवर्सिटी में से करा देता हूँ, नहीं मैं तो हिंदी से ही करूँगा, हिंदी में टॉप किया उसे।
गाजियाबाद के पिलकुए के रहने वाले शर्मा परिवार के कुमार विश्वास 5वीं संतान हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़ने का जब उन्होंने फैसला लिया तो उनके प्रोफेसर पिता को बेहद निराशा हुई। कविताओं के पीछे भागने वाले कुमार विश्वास ने जब इंजीनियरिंग छोड़कर बीए की पढ़ाई पढ़ने की इच्छा पिता के सामने जाहिर की तो पिता ने फरमान सुना दिया कि फीस के पैसे भी खुद ही जमा करो।
बीए पास करने के बाद भी जब अंग्रेजी और हिंदी में से किसी एक को चुनने का विकल्प कुमार विश्वास के सामने आया तो उन्होंने हिंदी को गले लगा लिया और फिर वो देखते ही देखते हिंदी के एक मशहूर कवि बन गए।
कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है। ये पंक्ति सुनना और आप तक पहुंच जाए तो सूचित करना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है।
मैंने इसका प्रवेश सागर विश्वविद्यालय में करा दिया था, एमए अंग्रेजी के मध्य प्रदेश में। मैं उस समय एमफिल कर रहा था, लेकिन इसका मन हिंदी साहित्य में था और मैं फीस मैंने जमा करा दी थी। उसके बाद भी इन्हें कहा भाई साहब मैं इंग्लिश में एमए नहीं करूँगा, मेरी रुचि हिंदी में है, मुझे विधि साहित्यकार अच्छे नहीं लगते पढ़ने। और वो फिर एमएस कर गाजीबाद में एमए हिंदी करने आया, एमए हिंदी में टॉप किया और नेट पास करने के बाद राजस्थान के कॉलेज में लेक्चरर हो गया। इसकी रुचि साहित्य पर जाना थी।
विकास शर्मा बताते हैं कि बचपन से ही कुमार विश्वास का परंपराओं को तोड़ने में यकीन था। वो बने बनाए ढर्रे पर चलने की बजाय अपनी अलग राह बनाने में भरोसा रखते थे और उनकी इसी सोच का एक नतीजा ये भी था कि उन्होंने अरेंज्ड मैरिज करने की बजाय लव मैरिज की थी। कुमार विश्वास का कवि मन भी उनकी इसी सोच का नतीजा है।
कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, जैसी कविता से युवाओं के दिलों में जगह बनाने वाले कुमार विश्वास आज देश के सबसे महंगे मंचीय कवि बन चुके हैं। हिंदी और उर्दू या किसी भी भाषा का कवि 3 घंटे के कवि सम्मेलन के लिए 4 लाख रुपए मांगने के बारे में शायद सोच भी नहीं सकता, लेकिन कुमार विश्वास कवि सम्मेलनों में अपने इनोवा कार से जाते हैं और एप्पल आईफोन के लेटेस्ट मॉडल का इस्तेमाल करते हैं।
भ्रमर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का,
और प्रोफेसर्स की भी दाद चाहता हूँ इन बच्चों के साथ।
अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा,
साल 2010 में जब अन्ना हजारे के आंदोलन की नींव तैयार हो रही थी तब इस आंदोलन से युवाओं को जोड़ने का जिम्मा कुमार विश्वास को सौंपा गया था। लेकिन आंदोलन के साथ साथ कुमार विश्वास का कद भी बढ़ता चला गया। अन्ना आंदोलन ने कुमार विश्वास को एक साधारण कवि से सेलिब्रिटी बना दिया। 2010 तक वो एक कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए 40 से 50 हजार रुपए लिया करते थे, लेकिन अन्ना आंदोलन के बाद उनके भाव आसमान पर जा पहुंचे। अन्ना आंदोलन के महत्व को अपने करियर में कुमार विश्वास ने भी कबूल किया है। उनका कहना है कि अन्ना आंदोलन से पहले मुझे केवल युवा ही कवि के रूप में पहचाना करते थे, आंदोलन से जुड़ने के बाद मुझे और ज्यादा लोग पहचानने लगे हैं।
के पहले कुमार विश्वास खुद को कवि के तौर पर स्थापित कर चुके थे। युवाओं के बीच कविता प्रेम जागृत करने के लिए वो कॉलेजों में जाकर कवि सम्मेलन किया करते थे। ऐसा पहला आयोजन उन्होंने साल 2002 में एनआईटी दिल्ली में किया, जहां उन्होंने अपनी कविता कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है सुनाई थी।
लड़कों की खास दाद चाहिए मुझे इस पर। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता।
युवाओं के साथ उन्हीं की भाषा में बात करना, उनके जैसे ही कपड़े पहनना, उन्हीं की तरह बोलने जैसी खासियतों ने कुमार विश्वास को युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। कुमार विश्वास युवाओं की तरह ही तकनीक का भी भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो ट्विटर और यूट्यूब पर भी मौजूद रहते हैं। गूगल पर उनके नाम का सर्च करने पर 11,30,000 रिजल्ट सामने आते हैं। वो शायद हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने अपना बिजनेस मैनेजर और ब्रांड मैनेजर भी रखा। कुमार विश्वास के प्रशंसकों में फिल्मकार अनुराग कश्यप, क्रिकेटर सुरेश रैना और अभिनेता शेखर सुमन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। कुमार विश्वास इकलौते कवि हैं जो कॉरपोरेट शो में बुलाए जाते हैं और जापान, वियतनाम, न्यूजर्सी समेत दुनिया के कई देशों में वो शो भी करते हैं।
कुमार विश्वास प्रेम रस के कवि हैं, लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन में उन्होंने अपनी छवि बेबाक और निडर कवि की बनाई। कविता पाठ की वजह से कुमार विश्वास लोकप्रिय होते गए, लेकिन विवादों से भी उनका नाता जुड़ता रहा है। अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान भी उन पर मंच से भड़काने वाले बयान देने के आरोप लग चुके हैं।
खुर्शीद साहब, हम आपको सूचना देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई भी हम इसी देश में निपटानेंगे और कांग्रेस की लड़ाई भी यही निपटानेंगे। ना हम कहीं यूएनओ जाएंगे, ना कहीं जाएंगे। घटने की समस्या आपकी पैदा की हुई है, आपके बाप की पैदा की हुई है, उसका भविष्य भी हम यही तय करेंगे। कहीं किसी यूएनओ में जाने की जरूरत है।
मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है।
कुमार विश्वास की कविताओं ने जहां उन्हें शोहरत दिलाई है, वहीं उनके सामने मुश्किलें भी खड़ी करती रही हैं। कुमार विश्वास ने कौरवी लोकगीतों, लोक चेतना विषय पर पीएचडी की और उन्होंने राजस्थान में लेक्चरर की पोस्ट पर 1994 में काम करना शुरू किया। उसके बाद वो कई कॉलेजों में पढ़ाते रहे, लेकिन कुमार विश्वास की पहचान प्रोफेसर से ज्यादा एक कवि के तौर पर ही रही है। खासतौर पर उनकी कविताएं युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन अन्ना हजारे के मंच पर जब वो एक कवि के तौर पर प्रकट हुए तो उसके बाद उनके लिए राजनीति के दरवाजे भी खुल गए। लेकिन आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास को एक राजनेता के तौर पर शोहरत उस वक्त मिली जब वो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव मैदान में कूद खड़े हुए।
जिसको लगता हो ये लड़ाई जीतनी जरूरी है, मैं उसको अमेठी बुला रहा हूँ। कल से अमेठी की ट्रेनें भर जानी चाहिए, बसें भर जानी चाहिए, गली गली उतर जाओ, कूचे कूचे जाओ, हर दरवाजे पर जाओ, हाथ जोड़ो, पूछो उनसे कि आम आदमी जीतेगा या राजकुमार जीतेगा।
आम आदमी पार्टी के मंच के मास्टर कुमार विश्वास ने जब कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता और प्रधानमंत्री पद के दावेदार को चुनाव में चुनौती दी तो उनके इस राजनीतिक प्रोत्साहन को देखकर हर कोई हैरान रह गया था।
प्रदेश की आम आदमी पार्टी की यूनिट ने लिखकर और मेरा फॉर्म भरकर अनुरोध किया है देश की आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी से कि हम चाहते हैं कि अरविंद भाई सरकार चलाने में व्यस्त हैं, हम चाहते हैं कि कुमार विश्वास को आप अमेठी भेजें ताकि हम अमेठी बता सकें कि अब अमेठी गुलाम नहीं है, आजाद हो चुकी है, राजवंश जा चुके हैं, लोकतंत्र आ चुका है।
सादगी की दुहाई देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास जब लखनऊ से 25 लाख की एक एसयूवी में सवार होकर अमेठी के लिए रवाना हुए तो उनके साथ दूसरी पार्टियों की तरह दर्जन भर गाड़ियों का काफिला शामिल था। लेकिन अमेठी के रास्ते में जगदीशपुर पहुंचते ही उन्हें काले झंडे दिखाए गए। जब वो और आगे बढ़े तो उन पर स्याही और अंडे फेंके गए। कुमार विश्वास का काफिला जब अमेठी पहुंचा तो उस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। लेकिन इन हालात से जूझने के बाद भी वो अमेठी के मंच पर हाजिर हो गए। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस की मदद से चल रही थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने लोक लुभावन वादों को दनादन लागू करने में जुटे थे। उधर अमेठी में कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे थे। दरअसल आम आदमी पार्टी ने विश्वास को राहुल के खिलाफ इसलिए अमेठी सीट से मैदान में उतारा था क्योंकि केजरीवाल पर बीजेपी कांग्रेस की बी टीम होने का आरोप लग रहा था।
हमने कांग्रेस से समर्थन मांगा है ना कांग्रेस से समर्थन की इच्छा है। कांग्रेस अपने समर्थन पर रोज विचार करे कि देना है कि नहीं देना है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के हित के 18 मुद्दे सदन के पटल पर रखे। कांग्रेस के विधायक और दो निर्दलीय विधायकों ने खड़े होकर कहा कि हम इसके साथ हैं।
2013 दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनने से पहले ही कुमार विश्वास इशारों इशारों में कह चुके थे कि वो अमेठी से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, लेकिन केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने के बाद से ही उनके गांधी परिवार के खिलाफ हमले और तेज हो गए थे।
राहुल गांधी जी के संपूर्ण राजनीतिक जीवन में उनके नाम के पीछे के गांधी के अलावा कोई विशेष नहीं है। पूरे लोकसभा के 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक सवाल तक नहीं पूछा है। अमेठी का जो हाल है वो सबको पता ही है।
कुमार विश्वास का अमेठी से कोई सीधा नाता नहीं था, लेकिन अमेठी पर निशाना इसलिए क्योंकि अमेठी से गांधी परिवार का लगातार नाता बना था। संजय गांधी और राजीव गांधी इसी सीट से चुनाव जीते और सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी इसी सीट से दो बार चुनाव जीत चुके थे। राहुल अक्सर अमेठी का दौरा करते हैं, उनकी बहन प्रियंका भी इस इलाके में आती रही हैं। ऐसे में कुमार विश्वास ने अमेठी से चैलेंज देकर कांग्रेस और राहुल गांधी को भौचक्का कर दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी राजनीति में बड़े प्रतीकों की अहमियत को खूब समझती है। वो राजनीति में प्रतीकों को बनाती और ध्वस्त करती रही है। 2013 के दिल्ली चुनाव में केजरीवाल ने शीला दीक्षित को करप्शन का प्रतीक बनाकर न सिर्फ प्रचार किया बल्कि खुद भी शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए और उन्होंने शीला दीक्षित को हराया भी। लेकिन आम आदमी पार्टी की जीत की इस कहानी को जब कुमार विश्वास 2014 में लोकसभा चुनाव में दोहराने के लिए अमेठी पहुंचे तो उनके नसीब में हार आई।
5 महीने अमेठी में गालियां खाने के बाद 25,000 वोट लेकर मैं लौटा और मैं उससे मिला। मैंने उसको कहा सब बर्बाद हो गया, अब तो बहुत मुश्किल है। उसने कहा हाँ ये तो है, और फिर चलते समय कंधे पर हाथ रखकर कहा सर जी ईश्वर है, हम सत्य के साथ हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, हम जीतेंगे।
राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी में लोकसभा का चुनाव कुमार विश्वास बुरी तरह हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए। वो पार्टी के स्टार प्रचारक भी बने रहे और साथ में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के संकट मोचक भी।
17 तारीख का जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, सशर्त इस्तीफा दिया था, उस टॉक्स की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमने वो बाहर लीक नहीं किया था। आज हमने उस हिस्से की आपको प्रति भी दे दी है, लेकिन उन्होंने जो जो बात कही थी वो सब हमने मान ली, लेकिन अरविंद को हटाने की बात पर पार्टी सहमत नहीं है।
साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारक कुमार विश्वास ही थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के जंग में वो केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े नजर आए, और जब आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंका तो वो विरोधी गुट के सामने केजरीवाल की ढाल बनकर खड़े हो गए।
केजरीवाल से आगे निकलना चाहता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता बनना चाहता हूं, लेकिन मेरी कुछ निजी दिक्कतें हैं। मैं घड़ियों से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं गाड़ियों से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं अपनी बेटी के साथ समय बिताने से आगे नहीं निकल पा रहा, मैं 15 दिन भूखा नहीं रह सकता, मैं सड़क पर नहीं सो सकता। इसीलिए अरविंद मेरा नेता है।